हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रुहान जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पर पहुँचा, पहले से लिफ्ट के सामने एक वार्म स्माइल लिए जूली खड़ी थी। उसने रुहान को ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून सर, आपका केबिन ये थर्ड नंबर वाला है। आइए मैं आपको सारे चैम्बर दिखाती हूँ जो इस फ्लोर पर है, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। रुहान ने अपने हाथ में पड़ी फाइल जूली को थमाई और फिर चलते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी इस अकड़ को देखकर जूली को मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर उसने वेदांत की बातें याद की कि जाने अनजाने में भी रुहान के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे उसको थोड़ा सा भी बुरा लगे। जूली ने उसे उस फ्लोर पर मौजूद एक एक चैम्बर दिखाया जिसमें और भी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। उसके बाद जूली ने रुहान को उसका वर्क समझाया और फिर रुहान अपनी चेयर पर बैठ गया। चेयर पर बैठते ही उसकी आंखों के सामने अनाही का चेहरा घूम गया। जूली ने रुहान को कहीं खोया हुआ देखकर कहा, आपको कुछ चाहिए तो आप इस टेलीफोन बूथ से कॉल कर सकते हैं। इसमें रिसेप्शनिस्ट का नंबर है और साथ ही यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज की लिस्ट भी। अगर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं आपकी सारी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जूली काफी प्रोफेशनल लड़की थी और ये देखकर रुहान को काफी अच्छा लगा। उसने बस सिर हिलाया और फिर लैपटॉप ऑन करके अपनी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट लेकर बैठ गया। शायद इस प्रोजेक्ट में उसे बहुत सारी गलतियाँ होने वाली थीं जिससे आगे जाकर उसको सीख मिल सकती थी। मन में थोड़ी सी घबराहट, चेहरे पर हल्का सा कॉन्फिडेंस लेकर वो अपने काम में जुट गया। देखते ही देखते कब शाम हो गई किसी को पता भी नहीं चला। शाम के करीब 8:30 बजे निमानी हाउस के सामने दो गाड़ियां आकर रुकीं। पहली गाड़ी से वेदांत उतरा तो वहीं दूसरी गाड़ी से अनाही। पता नहीं क्या सोचकर, लेकिन अनाही आज तूफान के साथ आई थी। मन ही मन रुहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो अपने चेहरे से ऐसे दिख रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अनाही ने उसके साथ आने से, वही माधवी बेचैन होकर हॉल में घूम रही थी। वेदांत जैसे ही आया, उसे देखकर वो उसके पास जाते हुए बोली, बेटा तुमने विहा को कुछ कहा क्या? वो जब से कॉलेज से आई है तब से बाहर ही नहीं निकली है। माधवी अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाकर ये सब बोल रही थी, वरना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विहा क्या कर रही है और क्या नहीं, लेकिन उसे तो मसालेदार खबर चाहिए थी कि आखिर वेदांत और उसकी पत्नी के बीच हुआ क्या है, ताकि वो उसमें और भी ज्यादा मिर्च मसाला ऐड कर सके। और हो सकता है कि विहा की फिक्र दिखाने से वेदांत का दिल भी जीत जाए, जो वो आज तक नहीं जीत पाई थी। माधवी जहाँ मन ही मन खुश होते हुए वेदांत से उसकी और विहा की बहस पूछ रही थी, उसकी सारी खुशी पल भर में दुख में बदल गई जब उसने सामने से आते रुहान और अनाही को देखा। रुहान ने अपने हाथ में पकड़ा बैग अनाही को थमाते हुए कहा, आज का टिफिन बहुत अच्छा था। अनाही ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके हाथ से वो बैग ले लिया। इसके बाद रुहान तेज कदमों से माधवी के पास आ गया। माधवी, जो अभी हैरान थी उसके पास आने से, एकदम से होश में आते हुए बोली, बेटा तुम इन लोगों के साथ? वेदांत, जो अब तक खामोश था, उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे साथ भी आ सकता है? रुहान को भी काफी अजीब लगा था माधवी का ये सवाल। वहीं माधवी ने जल्दी से अपने होठों पर मुस्कान सजाते हुए खुद को सही करते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस पूछ रही हूँ, ये अक्सर ऐसा नहीं करता है, बस इसीलिए। इतना बोलकर उसने प्यार से रुहान का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फिर धीरे से कहा, काफी थका हुआ भी लग रहा है। रुहान हल्का सा मुस्कुराते हुए माधवी को गले लगाकर कहा, ताई जी, आज मैं ऑफिस गया था, मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है, आप भी तो चाहती हैं कि आपका बेटा सुधर जाए, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही। अब माधवी रुहान को क्या बताए कि वो उसे रत्ती भर बदलना नहीं चाहती थी, उसे सुधारना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो तो चाहती थी कि जितना वो बिगड़ा हुआ है उससे भी और ज्यादा बिगड़ जाए, एक दिन ऐसी कंडीशन में आ जाए कि माधवी के कहने पर ही उठे और माधवी के कहने पर ही वापस बैठ जाए। वो तो उसे इस कदर अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। माधवी ने प्यार से रुहान के चेहरे को छूते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेटा, हर माँ यही तो चाहती है कि उसका बेटा सुधर जाए और कोई भी गलत काम ना करे। शुरू हो चुका था माधवी का लाड दुलार वाला सेशन, जिसे अटेंड करने का मन वेदांत का बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत ही वहाँ से अंदर चला गया। वहीं माधवी ने रुहान को अपने पास सोफे पर बैठाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सर की मालिश करते हुए उससे और बातें करने लगी, जैसे कि ऑफिस में क्या क्या हुआ था और उसने क्या सोचकर ये प्लान बनाया कि वो अब काम करेगा। तो वहीं वेदांत जैसे ही कमरे में पहुंचा, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि विहा ने पूरी अलमारी खाली कर रखा था और अपने सारे कपड़े सूटकेस में पैक कर चुकी थी। वो दोनों सूटकेस को सोफे के पास रखकर अब गहरी सांस लेते हुए अपना पसीना पहुंच रही थी। वेदांत ने अंदर जाकर हैरानी से कहा, टोमैटो, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुमने कोई नई अलमारी मंगवाई है? विहा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए हड़बड़ा गई और फिर अचानक ही कुछ याद करते हुए बोली, नहीं वेदांत, मैं क्यों अलमारी मंगवाऊंगी जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वेदांत हैरान हो गया। उसने आंखें बड़ी करके कहा, और तुम्हें क्यों नहीं रहना है यहाँ? विहा फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, आज मैं आपकी गर्लफ्रेंड से मिली थी, उसने कहा कि वो नहीं चाहती मैं आपके साथ रहूं, तो बस इसीलिए। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए लॉयर भी हायर किया है, जिससे मैं मॉर्निंग में बात करूंगी, उसके बाद हमारा डाइवोर्स हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड से रहना। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी और मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट भी। वेदांत ने आंखें छोटी करके कहा, क्या तुम मेरे ऑफिस आई थी क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड जूली को समझती हो, जबकि जूली तो आज पूरे दिन ऑफिस में थी, वो तुमसे कब मिली? विहा की आंखों में तुरंत ही पानी आ गया। उसने मायूसी से कहा, आपको अभी इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड से आखिर मिली कैसे? आपको ये बात नहीं चुभी कि उसने मुझे डाइवोर्स लेने के लिए कहा है, और आपको जरा भी अफसोस नहीं है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? 7 दिन बताए हैं हमने इस कमरे में, क्या मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आई कि आपको? इतना बोलने के साथ ही विहा की आंखों का पानी उसके गालों पर आ गया। वेदांत तेज कदमों से उसके पास गया और फिर उसका छोटा सा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, बेबी, तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था, और मिस तो मैं तुम्हें तब करूंगा ना जब तुम यहाँ से जाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। उसका ये नरम लहजा और प्यार भरी बात सुनकर विहा और भी ज्यादा बिलख कर रोते हुए बोली, आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं वेदांत, आपकी गर्लफ्रेंड मुझे धमका रही थी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, और आप है कि? वेदांत ने अपना अंगूठा उसके होठों पर रख दिया था, जिससे उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और वो आंखें बड़ी किए वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, रुको एक मिनट, पहले तो मुझे ये जानना है कि तुम मिली किससे थी, ये बताओ तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ मिली? इतना बोलकर वेदांत ने अपना अंगूठा उसके नरम होठों से हटा लिया, क्योंकि परेशानी वेदांत को भी हो रही थी विहा को इस तरह छूकर। विहा ने तुरंत ही कहा, मतलब आप मानते हैं ना कि आपकी गर्लफ्रेंड है? वेदांत ने एक हाथ से अपना माथा पीट लिया और फिर विहा को अपनी बाहों में उठाकर खुद बेड पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा प्यार से बोला, बच्चा, पहले बताओ तो सही कि तुम कहाँ किससे मिली हो, उसके बाद मैं करूँगा ना एक्सप्लेन सब कुछ, ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा?
पता नहीं क्यों, पर वेदांत का ये लहजा सुनकर विहा को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। कभी कभी सामने से आया प्यार भी तकलीफ देता है, या यूं कहो अपने दिल के दर्द को निकालने के लिए विहा के पास अब एक रीजन मिल गया था। विहा ने लगभग रोते हुए कहा, मैं उसे कॉलेज में मिली थी।